नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से ये है फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी लाइव प्रस्तुति 21 दिवसीय योग चैलेंज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं 21 दिवसीय योग चैलेंज का हिस्सा और साथ साथ कर सकते हैं संपूर्ण योग। इस संपूर्ण योग में योग के सभी आयामों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम योग कहते ही सिर्फ योगासनों की बात करते हैं, मगर सिर्फ योगासन ही योग नहीं है। योग के अलग अलग आयामों में यम, नियम, प्राणायाम, आसन इत्यादि आते हैं। तो हम योगासनों पर तो हर दिन अभ्यास कर ही रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के शुरुआती 10 मिनट में हम कुछ योगासन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बोध लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। क्योंकि ये लाइव प्रस्तुति है तो आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम करेंगे 5 मिनट का राजयोग ध्यान। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अभी लिख सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां कमेंट से हम आपके प्रश्नों को उठाएंगे और हमारे एक्सपर्ट से उसके लिए आज आंसर्स भी लेंगे। मगर उससे पहले आइए चलकर करते हैं साथ में योगासन।
ओम शांति, वंदे मातरम। प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं भस्त्रिका प्राणायाम की ओर अग्रसर हो रहा हूं। प्राणायाम भी बहुत सारे प्रकार के हैं और उसमें से जो नैसर्गिक है, जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, जैसे मां के गर्भ से हम बाहर निकले, और जो ऑटोमेटिक प्राणायाम शुरू हो जाता है वो भस्त्रिका प्राणायाम है। उसका रिदम प्लस माइनस हो सकता है, उसमें कुछ एडिशन, कुछ प्लस, कुछ माइनस, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन जो नैसर्गिक सांस प्रश्वास की प्रणाली है वो भस्त्रिका है। मां के गर्भ से जैसे ही हम बाहर निकले और जो अपने आप प्रक्रिया शुरू हो गई और जो अंत तक चलती है, मृत्यु तक चलती है, वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका संस्कृत शब्द है। थोड़े 15-20 साल पहले जैसे वो पीतल के बर्तनों में कलाई वाले लोग आते थे, कलाई करते थे, वे और सोनी लोग। कलाई वाले आपको मालूम होगा कि जमीन में गड्ढा करते थे, वो चमड़े की जो थैली होती थी उसका एक छोर जो पाइप होता है वो उस गड्ढे में रहता है, वहां वो कोयले डालते थे और फिर उसके ऊपर कोई बर्तन रखी, यहां से थैली का मुंह खोलते थे, लकड़े का होता था ऊपर के डंडे, फिर बंद करके नीचे दबाते थे तो उस चमड़े की थैली में जो हवा आती थी, यहां बंद करते ही वो हवा आगे भट्टी की ओर चली जाती थी जब हम नीचे दबाते थे। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो मालूम होगा। तो ये जो हमारा फेफड़ा है वो भी एक चमड़े की थैली है, उसे भस्त्रिका कहते हैं। और हम जब गहरी सांस लेते हैं और प्रश्वास करते हैं, लेना प्रश्वास करना, लेना प्रश्वास करना, ये भस्त्रिका है और ये नैसर्गिक है। लेकिन वो अगर जब हम जानबूझकर करते हैं, रिदमिक करते हैं, कुछ सेकंड सांस लेने में लगाते हैं, कुछ सेकंड सांस प्रश्वास करने में लगाते हैं, तो उस जानबूझकर लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम भस्त्रिका कहेंगे। इसमें तीव्र भस्त्रिका भी होता है, भस्त्रिका भी होता है, विलंबित भस्त्रिका भी होता है, इस छोटे छोटे उसके टुकड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जन्म लेने के साथ ही प्रक्रिया हमने आरंभ की उसको थोड़ा साक्षी दृष्टा होकर के जानबूझ कर लेने का प्रयास करेंगे। आप सीधा बैठ जाएंगे सुखासन या सिद्धासन में, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियां उल्टी करके घुटनों पर रख देंगे, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, खुद को आत्मा चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और फिर गहरी 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 सांसें लेंगे एक सांस भरने में आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड लगे और प्रश्वास करने में भी आपको 3 से 4 सेकंड लगे। गहरी सांस, ये क्रिया नॉनस्टॉप आप कम से कम 30 बार करें। गहरे 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 सांस भरना और आहिस्ते 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 सांस छोड़ना। कम से कम 4 सेकंड सांस भरने में लगे, 4 सेकंड प्रश्वास करने में लगे। आप नॉनस्टॉप ये क्रिया जारी रखेंगे, मैं कुछ इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। जब आप 15 सांसों तक पहुंचेंगे तब आपके बंद आंखों की पलकों पर और मस्तिष्क पर एक श्वेत रंग की आभा दिखाई पड़ेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका नासिका से फेफड़ों तक का इलाका थोड़ा गर्म मालूम पड़ेगा, नासिका भी गर्म हो जाएगी। जब आप दूसरा वृत्त शुरू करेंगे, दूसरे राउंड में जाएंगे, तब आपके मध्य मस्तिष्क में पूर्ण रूप से श्वेत रंग की आभा छा जाएगी। फिर वो आभा धीरे 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 गेरुआ रंग में बदल जाएंगी, फिर नीला रंग भी आपको दिखाई पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व के 3 जो आयाम है उसमें 3 प्रकार के रंग दिखाई पड़ेंगे। आप गहरी गहरी सांसें भरिए और प्रश्वास करिए। हमने जो सांस भरी है उस सांस में जितनी भी हवा अंदर गई है उसमें से 20.4% ऑक्सीजन है। अब जब हम प्रश्वास करते हैं तो केवल 4% ऑक्सीजन अंदर रुकता है, बाकी वापिस आता है। कार्बन 0.04% होता है जो 16% बनकर के बाहर आता है, कार्बन बढ़ के आता है। फिर नाइट्रोजन वगैरह भी होता है, वो जो कहते हो वापिस आता है। खेल कार्बन और ऑक्सीजन का ही होता है। फिर से गहरी गहरी सांसें भरे। इस आयाम में थोड़ा ध्यान रखे, जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जब बातचीत करते हैं, काम में व्यस्त होते हैं, प्राणायाम की अवस्था में नहीं होते हैं, तब ये 20.4% वाला खेल होता है। लेकिन जब आप जानबूझकर गहरी गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस लिया आपने और कुछ सेकंड आपने रोका, तो फिर वो ऑक्सीजन की उसमें जो ग्राह्यता है वो बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा रुक रुक के प्राणायाम करें, अंदर ऑक्सीजन बढ़ने दें। इस प्राणायाम से चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपके चेहरे की आभा बढ़ जाएगी, आपका ऑरा विस्तीर्ण हो जाएगा, आंखों पर सबसे पहला फर्क आपको आंखों पर मालूम पड़ेगा। ब्रेन के अंदर जितने भी अरब सेल है वो सभी सेल के मूल जो शेप है षटकोणाकार वो मेंटेन होगा। हमारी याद शक्ति बढ़ जाएगी, स्मृति बढ़ जाएगी, नींद नेचुरल होंगी, मस्तिष्क के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का संतुलन होगा, हमारा फेफड़ा बिल्कुल ऑक्सीजनवान हो जाएगा, पूरे शरीर में जितनी भी कैपिलरीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी नस नलिकाएं हैं वो पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन में स्नान करेगी। इतना ऑक्सीजन बढ़ जाएगा कि पूरे दिन तक आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है आप 30-30 के वृत्तों में करें। 30-30 के 3 वृत्त कर सकते हैं, 5 वृत्त कर सकते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं वो इसको तीव्र भस्त्रिका के रूप में करें, जैसे ये 1 मिनट में आप 60 तक कर सकते हैं, और ऐसे कम से कम 5 मिनट भी आप अध्ययन करें। लेकिन याद रहे आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको हार्ट की बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको आंतों के संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, मस्तिष्क में कोई गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होने चाहिए। ऐसी अवस्था में आप ये तीव्र भस्त्रिका करेंगे, आपको तुरंत एक ही राउंड में तो इतना पसीना आ जाएगा, अभी मैं एसी में बैठा हूं फिर भी मुझे पसीना आ गया है। तो ये टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकासी करेगा। याद रहे ये प्राणायाम कभी शाम को मत करना, आप कोई भी प्राणायाम शाम को मत करना कपाल भाती को छोड़ करके, क्योंकि अगर शाम के वक्त प्राणायाम करेंगे तो मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, कार्बन कम हो जाएगा, फिर आपकी रातों की नींद चली जाएगी, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। मस्तिष्क के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बन और ऑक्सीजन का संतुलन होना जरूरी है। अस्तु, इस विषय का पूर्ण श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। जगत जननी प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी भारत माता को भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी को वंदन करके आज के विषय का समापन करता हूँ। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का, जो हमारे साथ सीधे बड़ौदा से जुड़े और उन्होंने आज धृष्टिका प्राणायाम के बारे में बताया। दोस्तों, प्राणायाम ही आज का विषय भी है, और प्राणायाम पर हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए, बोध देने के लिए और हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए योग शिक्षिका एवं प्राणायाम विशेषज्ञ शीतल जी जुड़ रहे हैं सीधे जम्मू से। तो आइए चलते हैं उनके पास और आज का हासिल करते हैं बोध और उनसे प्राप्त करते हैं प्रश्नोत्तर के उत्तर भी। नमस्कार शीतल जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
नमस्कार श्री निधि भाई,
बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप सीधे हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं और आज प्राणायाम के विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए आप हाजिर हैं। पहले तो हम हरीश वैद्य जी से प्राणायाम के बारे में कुछ चीजें जान ही रहे थे और भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया, कैसे करना है ये भी जाना, मगर हम जानते हैं कि मुनि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं। तो प्राणायाम पहले तो क्यों आवश्यक है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आज आप कुछ हमारे साथियों को विचार प्रस्तुत करें, अपने गहराई से कुछ चीजें बताएं ताकि वो इस बात को समझ सके, और फिर हमारे दोस्तों के कुछ प्रश्नोत्तर होंगे तो मैं उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, शीतल जी पहले 10 मिनट में अपना वक्तव्य रखेंगे, प्राणायाम के बारे में कुछ हमें बोध देंगे, कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे। अगर इस बीच आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दें ताकि मैं 10 मिनट के पश्चात शीतल जी से आपके प्रश्नों का उत्तर ले सकूं। शीतल जी, आपका बोध।
धन्यवाद। प्राणायामा वर्ड को समझने के लिए पहले हमें प्राणायामा वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राणा प्लस आयामा। सो प्राणा को, प्राणा है क्या चीज है? प्राणा बेसिकली लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे, और आयामा होता है उसको कंट्रोल करना, उसको इलोंग करना, इलोंगिनेशन ऑफ द ब्रेथ, ये होता है प्राणायामा। अब प्राणा से यहाँ पे कई लोग समझते हैं इट्स ओनली द ब्रेथ, बट यहाँ पे हमें इसको डीपर लेवल पे जाके समझने की जरूरत है कि प्राणा सिर्फ ब्रेथ को नहीं कहते हैं। प्राणा वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है जो हमारे एक एक सेल को चला रही है, हमारे हर एक ऑर्गन के बीच में मौजूद है, जो हमारे ऑर्गन्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो बेसिकली जब हम प्राणायामा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो वो बेसिक एनर्जी है, वो जो प्राण शक्ति है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या हर काम कर पा रहे हैं, उसको हमें सुचारू रूप से चलाना है और उसको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है। ये हमारा बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राणायाम करने का। अब प्राणायामा के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, तस्मिन सति योग श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः प्राणायामः, विच मीन्स कि टू कट डाउन द स्पीड ऑफ इनहलेशन एंड एक्सहलेशन। कि हमें क्या करना होता है कि जो स्पीड हमारी है इनहलेशन या एक्सहलेशन या जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसको हमें कट करना है। कट करना माना हम उसको रिटेन भी कर सकते हैं, उसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब उससे होगा क्या, एक्सटर्नल रूप से या फिजिकल रूप से अगर आप देखें तो नो डाउट देखने वाले को, जब आप प्राणायाम कर रहे होंगे देखने वाले को यही लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हो। बट एक्चुअली जब आप ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हो या आप उसको फ्लो होने दे रहे हो तो यू आर वर्किंग ऑन द डीपर लेवल, यू आर वर्किंग ऑन द प्राणास लेवल. वो आपकी कोशिकाओं में जो प्राणा मूव कर रहा है आप उसको फ्लो होने दे रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो. तो मिसकंसेप्शन है, पीपल थिंक कि आजकल जो प्राणायामा है इट्स ओनली द ब्रेथ थिंग, बट नॉट. उसका इफेक्ट जो है वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है, वो हमारी प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ हुआ है. तो अब हमें समझना होगा कि प्राणायामा करने से फिजिकल लेवल पे क्या फायदा है और डीपर लेवल पे क्या फायदा है. फिजिकल लेवल पे हमारे जो लंग्स हैं उनके जो लोब्स हैं, फ्रंटल लोब्स, बैक लोब्स, अपर लोब्स, लोअर लोब्स, उन सब का प्रॉपर यूसेज होता है. एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जो प्राणायामा नहीं करते हैं तो उन वो क्या अपने लंग्स का जो है वो सिर्फ 50% यूज करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेथ्स क्या होती है, शेलो हो जाती है, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं. तो 50% ही सिर्फ हम अपने लंग्स का यूज करते हैं. और जब आप प्राणायामा करना शुरू करते हैं कुछ समय के बाद आप अपने लंग्स का 80% तक यूज कर पाते हैं. सो ये है फिजिकल लेवल पे फायदा. और दूसरा है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो स्टेबल होता है. जब हम प्राणायामा करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो एक कांस्टेंट होता है. यूजुअली क्या होता है हमारा, अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो एकदम से हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है. अगर हम एंग्शियस हैं, अगर हम परेशान हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. और अगर आपने खुद महसूस किया होगा कि जब हम शांत होते हैं तो हमारी ब्रेथ्स जो होती हैं वो लंबी होती है, वो गहरी होती है. तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, हमारे ब्रेथ के साथ. और ब्रेथ का किसके साथ कनेक्शन है, हमारे माइंड के साथ. अब हम शिफ्ट करेंगे कि माइंड का और हमारी जो ब्रीदिंग है उसका क्या कनेक्शन है. बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसा मन होता है वैसी हमारी ब्रीदिंग होती है. जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हम बहुत गुस्से में हैं, उत्तेजित हैं, या किसी ऐसी परेशानी में हैं जहां पे आपको आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं, वहां पे आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. तो वो क्या हो रहा है कि आपकी मन की जो स्थिति है उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे, आपकी ब्रेथ के ऊपर दिखाई दे रहा है. सो इससे क्लियरली पता चलता है कि हमारे माइंड का और ब्रेथ का डायरेक्ट कनेक्शन है. अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमारी ब्रेथ जो है वो फास्ट हो रही है, वो स्टेबल रेट नहीं है, उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है. सेम वे से अगर आपको मन को शांत करना है तो हम ब्रीदिंग का यूज करते हैं, हम प्राणायामा का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माइंड को पीसफुल कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं. तो इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने शरीर को, अपने लंग्स को या अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, या हमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेनी है. ये तो है फिजिकल लेवल पे, बट मोर इसका डीपर लेवल पे फायदा क्या है कि आपके मन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, आपके मन के ऊपर प्रभाव डालता है. हम डे टू डे लाइफ में ध्यान नहीं देते हैं यूजुअली. हमारे सामने बहुत सारी लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे टॉर्टोइज़ेस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये इनका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत कम होता है, ये बहुत लॉन्ग ब्रेथ्स लेते हैं, तभी इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है. और एज कंपेयर टू जैसे हम डॉग्स ले लें या बर्ड्स ले लें, इनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इनका लाइफ स्पैन कम होता है. इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में भी अगर हम ब्रीदिंग को इलॉन्ग करेंगे, लंबी और डीप ब्रेथ्स लेंगे, तो हमारा भी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाएगा. यूजुअली ह्यूमन बींग पर मिनट 15 टाइम्स ब्रीद करते हैं, जो नॉर्मली जिनकी ब्रेथ्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लॉन्ग नहीं है, वो 15 टाइम्स करते हैं. और जो डीप ब्रीदिंग करते हैं ऑब्वियसली उनका धीरे धीरे बढ़ता है. सो पर डे में वी यूजुअली ब्रीद 21,600 टाइम्स. तो अभी हमको इसको धीरे धीरे, प्राणायाम का हमारा गोल क्या होता है कि हमारी ब्रेथ्स जो है वो लॉन्ग हो, ताकि हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़े. क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके ऑर्गन्स हैं वो सारा यूज क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बेसिस पे वो सारा फंक्शन करते हैं, वो प्राणा के बेसिस पे हमारा पूरा बॉडी जो है वो एक दूसरे से मिलके काम करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो प्राणा है, हम उसके ऊपर काम करें. इसीलिए हमें प्राणायामा को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है. अब बात करी जाए, हम अभी इतने फर्स्ट से संपूर्ण योग सीखने की बात कर रहे हैं. अब संपूर्ण योग में ये पतंजलि जी ने बताया है ये चौथा अंग है, चौथा लिंब है प्राणायामा। जैसे यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा और प्रत्याहारा, ये पांच जो हमारे होते हैं ये होते हैं बहिरंग योगा, मतलब जो हमें बाहर से करने हैं। और अंतरंग योगा हम आने वाली सीरीज में सीखेंगे। तो ये देखने के लिए तो बाहर का है, परंतु योग का अर्थ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, जैसे कि श्रीनिधि भाई ने अभी बताया कि सिर्फ आसना करना योग नहीं है। योग का अर्थ क्या है? योग का सही अर्थ होता है यूनियन। अब यूनियन किसका? माइंड, बॉडी एंड सोल का यूनियन, उसको योग कहा जाता है। आज क्या है कि यूनियन नहीं है, माइंड कुछ सोचता है, बॉडी फिर रिएक्ट करती है उस तरीके से, परंतु हार्मनी नहीं है। अभी हमें योग क्यों करना है, आज क्यों जरूरी है कि योग को हम अपने जीवन में उतारें? वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक ये यूनियन बनाना है। एक ये यूनियन जब बनेगा उसके लिए प्राणायामा का भी उतना ही जरूरी रोल है जितना कि यमा का है, नियमा का है और आसनास का है। तो आप अगर योग की जर्नी में हैं या आप अपने आप को एक योगी की तरह जीवन जीना चाहते हैं, योगी की तरह जीना तो एक अलग बात है, लोग प्रेफर नहीं करते हैं आजकल कि हमें योगी बनना है, इट्स मोर ऑफ लाइक कि हाँ आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, ये कहना सही नहीं होगा कि आप योगी बनना चाहते हो। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, फ्री फ्रॉम द सफरिंग्स एंड द मिसरीज। योगा में क्या कहा जाता है कि व्हाट इज योगा? योगा इज द सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि आप फिजिकली अपने आप को रियलाइज कर रहे हो, कि आप बॉडी को समझ रहे हो, आप मन को भी समझ रहे हो, आप तन के बारे में भी समझ रहे हो और आप आत्मा के बारे में भी समझ रहे हो, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है उसके बारे में भी। आप सबको जब तीनों को मिलाकर चलते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन आपको होती है। और सेल्फ रियलाइजेशन से क्या होता है? द वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स एंड द मिसरीज। सो कौन नहीं मिसरीज और सफरिंग से अलग रहना चाहता है? कौन चाहता है कि उसकी लाइफ में सफरिंग्स हो या मिसरीज हो? हर कोई चाहता है कि वो फ्री हो। हमें ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हम इसका आनंद ले सकें, खुशी से जी सकें और अपने जीवन को दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बना सके और खुशनुमा जीवन जी सके, सीधे शब्दों में। बाकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में तो हमारे गोल्स बड़े होते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं, बट एक बेसिक ह्यूमन बींग को यही है कि मुझे खुश रहना है। अब खुश रहने के लिए आपको इसका इसको योग को अपने जीवन का अमुक हिस्सा बनाना पड़ेगा। कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं है कि बनाना पड़ेगा, परंतु ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके सामने कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएं और कोशिश करें कि हम इसको साथ में लेकर चलें और जो भी सफरिंग्स और मिसरीज हैं उनको एक करेक्ट माइंडसेट से, आपकी बॉडी भी ठीक चाहिए, आपका माइंड भी ठीक चाहिए और आपको आत्मज्ञान भी होना चाहिए, फिर आप इस लाइफ को परफेक्टली जी सकते हो, फिर आप इस लाइफ का आनंद उठा सकते हो।
जी
बहुत जरूरी
शीतल जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। जब आप ये बात बता रहे थे तो पता चलता है कि योग के बेनिफिट्स क्या हैं, किस लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे आपने प्राणायामा के बारे में बता रहे थे तो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि जैसे हम दूसरे जानवरों में देखते हैं, एलिफेंट्स में देखते हैं, टॉर्टाइज में देखते हैं, उन सबकी ब्रीदिंग के फेसेस को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं आजकल हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सांसों पर ध्यान देना भी भूल जाते हैं। कभी कभार हम ये बात भी कहते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है भाई। तो ये हमारी रियलिटी हो गई है और शायद इसलिए लाइफ को रीडिफाइन करने, वापस ट्रैक पर लाने के लिए ये छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, ताकि अगर जब हम ये प्रयास करते हैं तो फिर हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि प्राणायामों में हम अपने प्राणों को रेगुलेट करते हैं, यानी हम सांसों को रेगुलेट करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ सांसों को रेगुलेट करने से कोई चीज बदल जाती है क्या? क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्या हमारे लाइफस्टाइल पर?
जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मन में किसी भी तरह के आपके इमोशन है, अगर आप गुस्से में हैं, आप अग्रेसिव हैं, तो डेफिनेटली आपकी ब्रेथ्स बहुत फास्ट हो जाती हैं। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि देयर इज अ कनेक्शन, वहां कनेक्शन है हमारे ब्रेथ का और माइंड का। तो उसी तरीके से जब हम अच्छे से डीप ब्रीदिंग करते हैं, और जब ब्रीदिंग में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, इट्स नॉट अबाउट प्राणायामा, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, इसके बारे में हम आगे आने वाली श्रृंखला में सीखेंगे। रिटेंशन है पूर का, रेच का, अंतर कुंभ का, बाहर कुंभ का। जब हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं, अगर सिंपल शब्दों में अगर एक नॉर्मल इंसान को समझना है तो इतना है कि जब आप ब्रेथ को होल्ड कर रहे हो और वहां पे होल्ड करके जब ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा जा रहा है, सेलुलर लेवल पे जाके वो ऑक्सीजन वहां पहुंच रही है, तो वहां पे जो गुस्सा क्यों आ रहा है, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द केमिकल, कोई केमिकल रिएक्शन कुछ हो रहा है, बहुत डीप साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो वहां पे आपको कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार हैं, उनसे कुछ एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, कोई प्राणा इम्बैलेंस हो रहा है, वो आपका रिएक्शन दिखाता है बाहर। और अगर हम ब्रीदिंग प्रॉपर करते हैं तो वहां पे जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं सेलुलर लेवल पे वो डीपली जाके उनको ठीक करता है। वहां पे जब ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचती है तो उस टाइम आपको जैसा भी फील हो रहा है ड्यू टू सम रिएक्शंस, इट्स वेरी डीप, और वो चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली आपका मन भी परिवर्तित होता है।
जी, एक और हमारे साथी प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास लगभग 5 मिनट जितना समय होगा जब हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो आज बहुत सारी जानकारी आप सबको हासिल हुई है, कुछ चीजों के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धर्म सिंह हमारे साथ YouTube पे लाइव देख रहे हैं और प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डीप रूटेड नेगेटिव थॉट्स सिंस एडोलेसेंस। वो कहते हैं कि उनके किशोरावस्था से उनको ज्यादा डीप रूटेड नेगेटिव थॉट्स हैं, उसे ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज गाइड अस, ऐसा कहते हैं धर्म सिंह।
जी, धर्म सिंह जी को मैं ये कहना चाहूंगी, आपको सबसे पहले जरूरत है इंट्रोस्पेक्ट करने की, अपने अंदर झांकने की। अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, तो आप अगर प्राणायाम भी करेंगे तो वो फिजिकल लेवल पे होगा, वो डीपर लेवल पे काम नहीं करेगा। जैसे हमने बताया कि माइंड बॉडी एंड सोल तीनों को साथ लेकर चलना है, तो इसमें आपको बैठकर खुद से बात करनी होगी कि इतनी नेगेटिविटी क्यों है। एक रीजन हो सकता है कि आप लाइफ में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हम सबकी लाइफ में होता है, आप क्या देखना चाहते हैं। अभी कोई भी सिचुएशन किसी के सामने आती है तो हम चूज करते हैं कि हम उसका पॉजिटिव साइड देखें या नेगेटिव साइड देखें। कई बार होता है कि सब कुछ गलत हो रहा होता है और हम कहते हैं कि नहीं, सब कुछ तो गलत है, पॉजिटिव कहाँ से देखें। उस समय हो सकता है कि वो चीज आपको नहीं दिख रही है, परंतु आने वाले समय में आपको इस चीज का आभास होता है कि वो सही के लिए हुआ था। तो दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आप बता रहे हैं एडोलसेंस एज से, कुछ ऐसा आपने अनुभव किया है, आपको उनको भूलना होगा और लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से, अपनी लाइफ लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख के फिर आपको जीवन जीना होगा। जो अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ में उनके बारे में सोचिए, उनके ऊपर फोकस करिए, तो आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी।
बिल्कुल, एक और साथी हैं सचिन हमारे साथ हैं, YouTube से कार्यक्रम देख रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो या दिल की बीमारी हो, क्या ये लोग क्या करें, ऐसा ये पूछते हैं प्राणायाम के बारे में। मेरी उम्र 21 वर्ष की है लेकिन मुझे ये सब समस्या है, तो क्या किया जाए, ऐसा जरूर बताएं, ऐसा सचिन पूछते हैं।
जी सचिन जी को सबसे पहले तो एक ये काम करना है कि आपको पहले एक बार डॉक्टर से चेक करना है कि आपको कोई अस्थमा, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र में भी लोगों को अस्थमा की शिकायत हो रही है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो पहले आपको रूल आउट करना होगा कि वो आपको फिजिकल लेवल पे किस चीज की वजह से हो रही है। इफ इट इज रिलेटेड टू एस्थमा, आपको उसका प्रॉपर जब तक मेडिकेशन है वो लेना होगा। उसके साथ साथ अगर आपको सांस लेने के लिए आपको अपनी जो कठिनाई होती है, अगर आपको लगता है कि ब्रेथ बहुत शेलो है, आप एक डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम से नहीं कि चलो आज हमें प्राणायाम करना है तो एक ही दिन में आप कपाल भाति भी कर रहे हैं, एक ही दिन में आप सब कुछ कर रहे हैं और अगले दिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करिए। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, पेट के ऊपर हाथ रखेंगे राइट हैंड को और डीप इनहेलेशन लेंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए और जब आप एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन पूरा लंग्स तक जाता है, एब्डोमिन तक जाता है। यूजुअली हमारी ब्रेथ्स बहुत शॉर्ट होती हैं, वो चेस्ट से ही रिवर्स हो जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप सुबह के समय खुली हवा में बैठ के डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद आप अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर दिल की बीमारी की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्राणायाम जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो हम नहीं कर सकते, परंतु ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम जो है ये आप कर सकते हैं, ये सेफ है बिल्कुल, और आप एक बार डॉक्टर से चेक करवा लें।
जी, सचिन जी ने कहा उनको अस्थमा की समस्या नहीं है, उनको सिर्फ दिल की बीमारी है, और आपने बहुत अच्छे से वो चीज बताई कि आप सिर्फ ये दो प्राणायामों के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग से शुरू करें, फिर आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्रयास कर सकते हैं। कुछ चीजें जो नहीं करनी है आपको, उसके बारे में भी आपको गाइडेंस मिला सचिन जी। मैं समझता हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग से पहले शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे दूसरे प्राणायामों के बारे में बात की जा सकती है। एक और हमारे साथी हैं, बेला जोहर नाम है इनका, बेला जोहर कात्याल, और ये पूछते हैं कि योगासन फॉर हाई बीपी, अगर किसी को हाई बीपी की समस्याएं हैं, हाई बीपी के मरीज हैं कोई, हाइपरटेंशन के, तो उनके लिए क्या योगासन किया जाना चाहिए?
जी, योगासन बेसिकली आप करते हैं आपके जो भी पॉस्चर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए, या फिजिकली आपको कोई फैटीग है उसके लिए करते हैं, उन सब चीजों के लिए हम योगासन का अभ्यास करते हैं, और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए हम योगासन करते हैं। तो हाई बीपी की अगर आपको समस्या है तो आप सब आसन तो नहीं कर सकते हैं, परंतु आप खड़े होके करने वाले आसनों में से अर्धकटी चक्रासन कर सकते हैं, पादहस्तासन कर सकते हैं, और बैठ के करने वाले भी बहुत सारे आसन हैं, परंतु यही है कि कोई भी आसन जिसमें आपको झुकना पड़ रहा है वो आसन आपको नहीं करना है। उसके अलावा आप जो भी आसन है उनको करिए, झुकने वाला अगर आप कोई आसन कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकें, बाकी आप जो भी आसन नॉर्मली होते हैं वो सब आसन कर सकते हैं।
जी, एक और साथी है फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, राघव प्रसाद पांडे नाम है इनका, और ये पूछते हैं कि ये 68 उम्र के हैं, इनकी एज 68 है, और प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि करना चाहता हूँ, आरंभ भी करता हूँ, पर ज्यादा देर 5 मिनट से अधिक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, ऐसा ये कहते हैं, क्या ये सही है, क्या ठीक रहेगा इनके लिए? 68 ईयर्स की एज है इनकी।
जी, 68 एज है अगर इनकी, तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपको बीपी की शिकायत या हृदय की कोई समस्या ना हो। अगर आपको ये दोनों समस्या नहीं है, अगर आप बिल्कुल फिट हैं एकदम, बाकी जो उम्र के हिसाब से जो चीजें रहती हैं सिर्फ वही, तो आप प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बस आपको एक बार रूल आउट करना है, वो तो उन्हें पता ही होगा, मैं आशा करती हूँ कि उन्हें पता हो ये बात। तो अगर आपको ये सब नहीं है तो आप शुरुआत करें अनुलोम विलोम से, आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाएं, क्योंकि उसमें आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है। अनुलोम विलोम में आप नॉर्मल ब्रेथ्स को लॉन्ग करते हो, स्मूथ करते हो, तो आप अनुलोम विलोम से शुरू करें, समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। आप यहाँ पे ये ना सोचें कि आज 5 मिनट किया तो नेक्स्ट डे आप एकदम से 10 मिनट कर लेंगे, नहीं। योगा में हमेशा कहा जाता है ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी जो आपको हमेशा सिग्नल्स देती है कि ये चीज करनी है नहीं करनी है, आप हमेशा उसे सुनिए। अगर बॉडी अलो करती है तो धीरे धीरे आप जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। मैं समझता हूँ दोस्तों, और ज्यादा प्रश्नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहेगा, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत सारी चीजों के लिए गाइडेंस लेना चाहेंगे। कल भी हमारे साथ भारती जी जुड़ेंगे, तो 3 दिन के लिए भारती जी हमारे साथ रहेंगे, आज कल और परसों। तो कल और परसों में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप पहले से भी सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम उन प्रश्नों को पहले से तैयारी के रूप में कार्यक्रम में इंक्लूड करने की कोशिश करें, वरना जब आप लाइव जुड़ते हैं तो लाइव में आप सीधे सीधे सवाल पूछ भी सकते हैं। भारती जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और प्राणायामों के विषयों पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला। कल और परसों भी हम प्राणायामों के ऊपर आपसे जानकारी लेंगे और हमारे दोस्तों के प्रश्नों के उत्तर भी आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में लेंगे। आज आप जुड़े सीधे लाइव हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद
दोस्तों। आइए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं। अब हमने सवाल जवाब कर लिए हैं और आखिरी हिस्सा राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जैसे कि पतंजलि ने योग के अष्ट अंग बताए हैं, एक लिम्स ऑफ योगा कहा जाता है, आज जैसे हम भारती जी से भी सुन रहे थे, तो राजयोग ध्यान के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगला मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट के लिए है, गाइडेड मेडिटेशन है, तो इस गाइडेड मेडिटेशन में हम सभी मिलकर मेडिटेशन करते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना नहीं भी जानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसे गाइड किया जाएगा। हम अपने विचारों को उसी अनुसार, इस गाइड किए हुए कॉमेंट्री के अनुसार चलाएंगे। तो चलिए करते हैं राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन।
ओम शांति। कुछ पलों के लिए हम अपने तन और अपने मन को स्थिर कर शांत अवस्था में बैठ जाएं। अपने मन के विचारों को देखें। मेरे मन में अभी क्या कुछ चल रहा है? मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या उसमें किसी प्रकार की चिंता है, भय है? किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन है? मेरा मन इन सब विचारों से कैसे भर गया? क्या मेरे अंदर किसी चीज को लेकर क्रोध है? ऐसा कैसे हो गया कि मैं शांत स्थिर अवस्था को छोड़ व्याकुल चिंतित परेशान हो गया? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि मैंने अपने स्वमान की सीट छोड़ अपनी आसपास की घटनाओं में बुद्धि को फंसा लिया और स्वयं के असली स्वरूप को भूल गए। इस जीवन यात्रा में चलते चलते हम ये भी भूल गए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारा साथ स्वयं परमात्मा देते हैं, लेकिन हम उस साथ को कैसे अनुभव करें? बहुत सरल तरीका है, बस अपने असली स्वरूप को याद करें। आखिर मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म अति सुंदर दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु मस्तक के बीचों बीच विराजमान। ये मेरा असली स्वरूप है। अगर आप चाहें तो स्वयं को इसी रूप में देखें, मन के नेत्र के द्वारा, बुद्धि के नेत्र के द्वारा। मैं
एक शुद्ध आत्मा हूं, शांत हूं और स्थिर हूं। अगर आपके मन में फिर भी अन्य विचार आ रहे हैं चिंता या भय के या व्यर्थ चिंतन के या कुछ ऐसी बातें जो आपको करनी है, कोई बात नहीं, आप इन विचारों से घबराइए नहीं, केवल अपनी अटेंशन, अपना ध्यान पुनः अपने असली स्वरूप को देखने में लगाएं और पुनः स्वयं को याद दिलाएं कि मैं एक बहुत सुंदर सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मस्तक के बीचों बीच मैं विराजमान हूं, मैं शांत हूं, खुश हूं और यही मेरा असली स्वरूप है। मैं अपनी हरेक जिम्मेवारी, हरेक परेशानी से बिल्कुल स्वतंत्र हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं। अनुभव करें कि परमात्मा जो मेरी ही तरह ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनकी छत्र छाया के नीचे मैं बैठी हुई हूं। जिस प्रकार सूरज के सामने जाकर हमें सूरज की गर्मी, सूरज का प्रकाश स्वतः महसूस होता है, मांगना नहीं पड़ता, उसी प्रकार जैसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा जो मुजात्मा के माता भी हैं, पिता भी हैं, रक्षक भी हैं, जिनको हम प्रेम के सागर, शांति के सागर कहकर भी पुकारते आए हैं, उनकी याद से स्वतः हम उनके प्रेम, शांति और शक्ति के प्रकंपन महसूस कर सकते हैं। ये प्रकंपन छत्र छाया की तरह हमें इस संसार के सभी प्रकार के नकारात्मक वाइब्रेशंस से बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। महसूस करें कि आप परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, परमात्मा की लाइट और माइट को स्वयं के भीतर महसूस करें। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं कि स्वयं परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं। महसूस करें उस शक्ति को, उस शांति को, मुझे पता है कि जिसका साथी स्वयं भगवान हो, उसे कोई भी प्रकार की चिंता या भय कैसे हो सकता है, जिसका साथी, जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, वो हर परिस्थिति का सामना निडर हो कर सकता है। हर परिस्थिति में विजय निश्चित है। स्वयं को के स्वरूप को देख, स्वयं के स्वरूप को देख और परमात्मा की याद की छत्र छाया में मैं आत्मा निश्चित हूं, निरसंकल्प हूं, शांत हूं और मेरी इस शांत में स्थिति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर का वातावरण भी शांति और शक्ति से भरता जा रहा है। कुछ पलों के लिए स्वयं को परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित, शक्तिशाली और शांत अवस्था में टिका लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी हुसैन दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मेडिटेशन करवाया। इसमें ये अनुभूति की कि अगर हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ लें तो फिर हम हमेशा परमात्मा को साथी बनाकर अपने आप को निश्चिंत बना सकते हैं। एक निश्चित अवस्था, जो कुछ जैसा होना है वैसा होगा ही, ये विश्वास मन में गहरा होता जाएगा। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम रिलैक्स्ड और शांत बने रहेंगे। ये अभ्यास आप दिन भर में जब भी करना चाहे कर सकते हैं। समय निकालकर दिन में 2-3 बार, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही इन अभ्यासों को करें और फिर इसका असर आपके जीवन शैली पर देखें। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट्स पे लिखकर बताएं। आप अपने दोस्तों को भी बुलाएं, क्योंकि 21 दिवसीय योगा चैलेंज में आज हम 15वें दिन तक पहुंच गए हैं। हमारे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, तो 21 तारीख तक के लिए कम से कम 6-7 दिन तो लोग हमारे साथ मिलकर योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन सीखें और फिर अपने लाइफ को एक बेहतर टर्न दे, अपने आप को हेल्दी बनाएं, अपने मन को शांत बनाएं, अपने आप को खुश बनाएं। तो देखिए आज की इस प्रस्तुति में अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिले हैं तो वो भी आप फीडबैक में हमें छोड़िए, ताकि हमें पता रहे कि हम अपने दोस्तों को भी ये बातें आगे शेयर करते रहें। आज आप सभी हमारे साथ जुड़ते रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिल रहे हैं, रेखा जी ने भी एक फीडबैक लिखा है, तो एवरी डे कौन सा टाइमिंग रहता है ये पूछ रहे हैं। रेखा जी, हम हर दिन शाम को 6 बजे शुरू करते हैं और आप हमेशा जुड़ सकते हैं। आज से लेके 21 तारीख तक हर दिन शाम को 6 बजे कार्यक्रम लाइव रहेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ना न भूले, अपने दोस्तों को भी ले आए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर हमारे 21 दिवसीय योगा चैलेंज के 16वें दिन आपसे मुलाकात होगी, तो फिर आप सभी कल मिलिए। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, ओम शांति।